पिछले एक हफ्ते से अनुपमा जी बुखार से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, तो साफ सफाई भी नहीं थी। आरवी ने सबसे पहले उनके कमरे को साफ किया और उन्हें वहां लिटाकर जैसे ही बाहर आई दरवाजा नॉक हुआ। आरवी ने आकर दरवाजा खोला, सामने ड्राइवर और डॉक्टर अंकल दोनों ही खड़े थे। आरवी ने उन्हें नमस्ते किया, फिर अंदर आने को कहा। ड्राइवर ने आरवी की तरफ कार्ड बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये सर ने आपके लिए भेजा है, हम बाहर ही हैं, जब आपको जाना हो बता दीजिएगा, सर ने कहा है आप जहां भी जाएंगी हमारे साथ ही जाएंगी। जी आपको बाहर रहने की जरूरत नहीं है, अंदर आकर बैठिए। आरवी ने अपने स्वभाव के अनुरूप मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुलाया, फिर दरवाजा बंद करके डॉक्टर मेहरा को अनुपमा जी के पास ले गईं। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया, कुछ सवाल किया, फिर टेस्ट के लिए उनका ब्लड लेकर और कुछ दवाइयां लिखकर आरवी को देकर वहां से चले गए। आरवी ने ड्राइवर से दवाई मंगवा ली। अब जाकर उसने अपने हाथ में पकड़े कार्ड को देखा तो चौंक गई, क्योंकि वो उसका कार्ड नहीं था बल्कि शान का क्रेडिट कार्ड था। उसके ऊपर शान का नाम लिखा था। आरवी ने तुरंत ही शान को फोन लगा दिया। शान अब भी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। उसने स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ही बिना फोन की तरफ देखे कॉल उठाकर कहा, बोलो। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसको पता ही था कि जैसे उसका फोन आएगा ही। आरवी उसके फोन उठाते ही उस पर भड़क गई, ये क्या मजाक है, मैंने अपना कार्ड मंगवाया था, फिर आपने अपना कार्ड क्यों भेजा है, इसका मैं क्या करूंगी। क्या करूंगी का क्या मतलब, तुम्हें ही खुद से जाकर सब सामान खरीदना था तो अब जाकर खरीद लो। मैंने कहा था मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। आरवी अब भी थोड़ी नाराज लग रही थी। वाइफ हो तुम मेरी, फिर मेरे पैसों को लेने से ये एतराज कैसा, हक है तुम्हारा इन पैसों पर, तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ करती हो तो क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता, इतना हक तो दो मुझे। शान ने बेहद संजीदगी से अपनी बात कही और खामोश हो गया। आरवी अब उसकी बात सुनकर निशब्द हो गई। पहली बार था जब शान ने यूं हक जताया था। दोनों कुछ पल खामोश रही, फिर आरवी ने कार्ड को देखते हुए कहा, मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी, आप सामान ही भिजवा दीजिएगा, और अब ड्राइवर को भी वापस बुला लीजिए, मुझे कोई काम नहीं गाड़ी का, गाड़ी अब हर वक्त वहीं रहेगी, जब जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लेना, वरना सुबह अंशु को स्कूल छोड़ने के काम तो आएगी ही, अकेले अगर तुम कहीं बाहर गई तो सोच लेना क्या करूंगा मैं तुम्हारा। शान ने लगभग उसको धमकी डाल दी, कैर की भी तो पत्थर मारकर। आरवी ने मुंह बना लिया, ठीक है खड़ी रखी अपनी एक गाड़ी यहां मेरे घर के बाहर बेवजह, मुझे क्या, पर अपना ये कार्ड वापस कैसे लेंगे बता दीजिए, ड्राइवर को देकर भिजवा दूं। नहीं अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर काम आएगा, जब वापस आओगी तब अपने साथ ही ले आना, ठीक है। दोनों ने बाय कहा और फोन रख दिया। आरवी ने फोन काटा और कार्ड देखते हुए कमरे में चली गई। उसने कार्ड को संभाल कर रख दिया, फिर नीचे आई, तब तक ड्राइवर भी लौट आया, तो उसने अनुपमा जी को दवाई दी और खुद काम में लग गई। दोपहर तक उसने सारे घर को साफ कर लिया। ड्राइवर अंशु को लाने चला गया और आरवी लंच बनाने लगी। उसने लिस्ट बनाकर शान को भेज दी थी तो सब सामान भी आ चुका था। आरवी ने लंच बनाया, फिर अनुपमा जी को देखने आई जो अभी अभी सोकर उठी थी, वो उन्हें बाहर ले आई। कुछ देर बाद गेट नॉक हुआ तो आरवी के लबों पर मुस्कान फैल गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला अंशु मम्मा कहते हुए उसके पैरों से लिपट गई। आरवी ने नीचे बैठकर उसको अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। कुछ देर उसे अपने सीने से लगाए रखने के बाद उसने उसको खुद से अलग किया और अपनी हथेलियों से उसके चेहरे पर फैले बालों को पीछे करते हुए कहा, आपको अपनी नानी से नहीं मिलना, सारा प्यार मम्मा पर लुटा देंगी, नानी के लिए कुछ बचाकर नहीं रखेंगी। नानी से भी अंशु बहुत लव करती है, अंशु ने मुस्कुराकर कहा और अपनी मीठी आवाज में नानी नानी पुकारते हुए अपने नन्हे कदमों से अंदर की तरफ दौड़ गई। उसकी मीठी आवाज अनुपमा जी के कानों में पड़ी तो उनके लबों पर मुस्कान फैल गई, वो उठकर खड़ी हो गई और नीचे बैठते हुए अपनी बाहों को फैला दिया। अंशु जाकर सीधे उनके सीने से जा लगी। अनुपमा जी उसको लाड करने लगी। अंशु का चेहरा खिला हुआ था, वहीं आरवी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने ड्राइवर अंकल को अंदर बुलाया, फिर दरवाजा बंद करके दोनों के पास आते हुए बोली, अंशु बेटा नानी के साथ ही रहना है अब आपको, पहले मम्मा के पास आइए, मम्मा आपके कपड़े बदल दें, उसके बाद नानी के साथ लंच करेंगे और उनके साथ मस्ती भी करेंगे। आरवी ने मुस्कुरा कर कहा तो अंशु ने हामी भर दी। अंशु को लेकर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई, उसको नहलाकर कपड़े बदलकर तैयार किया और नीचे ले आई। चारों ने साथ में लंच किया। आरवी ने ड्राइवर अंकल के लिए भी एक कमरा तैयार कर दिया था, सारे दिन उनको बाहर तो नहीं रख सकती थी। लंच के बाद अंकल आराम करने चले गए, आदत थी लंच में सोने की। अंशु तो अनुपमा जी के साथ खेलने में लगी थी और आरवी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अंशु के साथ वो भी बच्ची बन गई थी। अंशु के आने से उनके चेहरे पर रौनक लौट आई थी, आधी बीमारी तो वैसे ही गायब हो गई थी। कुछ देर में अंशु सो गई। अब माँ बेटी दोनों साथ में बैठी थी और अंशु वहीं सो रही थी। आरवी अब उनकी गोद में सर रखकर लेट गई, उसके लबों पर प्यारी सी स्माइल थी। कितने वक्त बाद उसको अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोने के सुकून को महसूस करने का मौका मिला था। हमें तो आपसे कुछ पूछने का वक्त ही नहीं मिला, चलिए बताइए कैसे हैं वहाँ सब, अनुपमा जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सवाल किया। आरवी अपनी हथेली को अपने सर के नीचे लगाते हुए आरामदायक पोजिशन में आ गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, बताती तो हूँ आपको फोन पर सब, वो तो आप बाकी सबके बारे में बताती हैं, पर हम आपसे दामाद जी के बारे में पूछ रहे हैं। अब आप दोनों के बीच सब ठीक है? आरवी शान के बारे में सोचने लगी। उनका रिश्ता जिस मोड़ से शुरू हुआ था अब उससे काफी आगे निकल गया था। शान की नफरत धीरे धीरे खत्म हो गई थी और अब तो उसकी बहुत केयर करता था। कभी कभी अनजाने में दोनों एक दूसरे के करीब भी चले जाते थे। रिश्ता सुधर रहा था उनका। कुछ देर इन बीते महीनों के बारे में सोचने के बाद आरवी ने कहना शुरू किया, पता नहीं माँ मुझे क्या कहना चाहिए, हमारा रिश्ता ठीक है या नहीं मैं नहीं जानती, पर इतना महसूस किया है मैंने कि पहले उनकी बातों में अपने लिए जो नफरत मुझे महसूस होती थी अब वो नफरत नजर नहीं आती। पहले के मुकाबले कम गुस्सा करते हैं, बात बात पर मुझे जलील नहीं करते बल्कि मेरी इज्जत करते हैं। इतने वक्त में जितना मैंने उन्हें जाना है उस हिसाब से वो बुरे इंसान नहीं है, अब मैं उन्हें समझने लगी हूँ, हमारी ठीक ठाक सी बात भी हो जाती है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी सुधर गया है हमारा रिश्ता, शायद कुछ वक्त बाद सब नॉर्मल हो जाए। आप वहाँ खुश है ना बेटा? अनुपमा जी एक माँ थी और माँ का दिल हर तरह से आश्वस्त होना चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित और खुश है। उन्होंने भी अपने मन की शंका को दूर करना चाहा कि क्या आरवी से फिर से सवाल किया, जिस पर आरवी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वहाँ खुश माँ, इस रिश्ते से अब मुझे कोई शिकायत नहीं, मेरे ससुराल में सब मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे लगता ही नहीं जैसे वो मेरा ससुराल है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दूसरा मायका हो जहाँ सब मेरे अपने हैं। मेरी बेटी जिसमें मेरी जान बसती है वो मुझसे इस तरह जुड़ी हुई है कि अगर घर पर हो और थोड़ी देर के लिए मैं उसकी आंखों से ओझल हो जाऊं तो मम्मा मम्मा पुकारते हुए अपने नन्हे कदमों से पूरे घर में दौड़ लगा देती है, और जब मेरे पास पहुंचती है तो मुझसे ऐसे लिपट जाती है जैसे मेरा ही कोई बेशकीमती अभिन्न अंग हो।
मेरे पति जो पहले मुझे अपनी पत्नी तक मानने से इनकार करते थे, हर बात पर मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाते थे, अब वो मुझे अपनी पत्नी होने का सम्मान देते हैं। अब उनकी बातों में वो बेरुखी, वो नफरत नहीं झलकती बल्कि परवाह झलकता है। भला मुझे इससे ज्यादा अपनी जिंदगी से और किस चीज की चाहत होगी? आरवी के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। अनुपमा जी ने झुककर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आरवी को खुश देखकर उनके बेचैन दिल को भी सुकून मिल गया था। आरवी यूं ही उनकी गोद में लेटी हुई उनसे बात करती रहीं। कितने वक्त बाद ऐसा मौका मिला था उन्हें, फोन पर तो कुछ जरूरी बातें ही हो पाती, पर अब दोनों ही एक दूसरे को इतने वक्त के बारे में सब बता रही थीं। ऐसे ही कुछ घंटे निकल गए। अंशु सोकर उठ गई, आरवी ने उसको खाना खिलाया, फिर तीनों नीचे चले गए। अंशु को सबसे नीचे बिठाया, आरवी उसके बालों में तेल लगा रही थी, अनुपमा जी आरवी के बालों में तेल मालिश कर रही थी। आरवी ने तेल लगाकर उसको अंशु के बालों को बांध दिया, वहीं अनुपमा जी ने आरवी के बालों को चुटिया में बांध दिया। उसके बाद आरवी अंशु का होमवर्क करवाने लगी और साथ में अनुपमा जी के बालों में तेल भी लगाने लगी। तीनों बाटे और मस्ती भी कर रहे थे। यूं ही उनका दिन बीता और रात हुई तो आरवी डिनर के सब काम निपटाकर अंशु के साथ कमरे में चली आई। दूसरी तरफ शान का आज घर जाने का मन नहीं था क्योंकि घर पर अंशु नहीं थी, पर आरवी को वादा किया था कि सुभाष जी के साथ वक्त बिताएगा, उनका ध्यान रखेगा और फिर अंशु से बात भी करनी थी, तो वो अपना काम खत्म करके घर चला गया। घर में कदम रखा तो आज आरवी वहां नहीं थी, नहीं अंशु थी। इस वक्त अंशु और आरवी हॉल में ही मिल जाते थे। अंशु खेल रही होती थी तो आरवी सब्जी काट रही होती थी। शान के घर में कदम रखते ही आरवी का चेहरा खिल उठता, वो किचन की तरफ दौड़ जाती थी, उसे पानी लाकर देती और कुछ देर बाद कॉफी लेकर उनके कमरे में चली आती थी। पर आज ऐसा नहीं हुआ। शान आया तो सही पर आरवी नहीं थी वहां। आज सौरभ ने उसको पानी ला कर दिया। शान की आंखों में अजीब सा सूनापन पसर गया और वो पानी लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अर्पिता जी आज किचन में थी, आरवी नहीं थी और सबको उसके हाथों के खाने की आदत हो चुकी थी, तो आज वो खुद डिनर बना रही थी। सुभाष जी सुयश जी के साथ बैठे किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। आज घर का माहौल एकदम बदला हुआ था और कहीं ना कहीं शान को ये बदलाव खल रहा था।